17 अक्टूबर दिन बुधवार, सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। यौन शोषण के खिलाफ मीटू अभियान की पहली बड़ी सफलता, नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया। महिलाओं ने कैसे जुटाई हिम्मत?
एक लड़की खड़ी होती है, दूसरी को हिम्मत मिलती है खड़ी होने की। एक दूसरे को देख के बोला, अच्छा ये भी बोल रही है तो मैं भी बोलूंगी इसके साथ।
केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने आई भीड़ हिंसा पर उतरी। वॉशिंगटन पोस्ट के लापता पत्रकार जमाल खशोजी से क्यों असहज था सऊदी अरब?
ये शख्स 2-3 ऑपरेट्स में हमारा सारा का सारा काम अंडू कर दे रहा था।
बात करेंगे दुनिया जहान में, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एमजे अकबर ने एक बयान जारी कर कहा कि मैंने अदालत से इंसाफ लेने का फैसला किया है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 67 साल के एमजे अकबर पर 15 से अधिक महिलाओं ने मीटू कैंपेन के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। केरल में सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन करने जा रही महिलाओं को आज कुछ लोगों की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ टीवी पत्रकारों पर हमले किए गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पहली बार वहां महिलाओं ने दर्शन की कोशिश की। इसराइली लड़ाकू विमान ने गजा क्षेत्र में 20 से अधिक हवाई हमले किए हैं। कुछ हफ्तों पहले फिलिस्तीनी सीमा से इसराइली शहर पर एक रॉकेट दागा गया था। फिलिस्तीनी के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसराइली सेना ने इस हवाई हमलों के जरिए हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में हुए विस्फोट में एक नेता की मौत हो गई है। जबर कहरमान नाम के इस नेता ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए वो चुनाव मैदान में उतरे थे। जिस वक्त धमाका हुआ उस समय जबर कहरमान अपने दफ्तर में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कहरमान लगातार तालिबानी चरमपंथियों के निशाने पर थे। उन्होंने हेलमंड इलाके में तालिबान को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई थी। हेलमंड के गवर्नर के एक प्रवक्ता उमर वाक ने इस विस्फोट के बारे में बताया। विस्फोटक सोफे के नीचे रखे हुए थे। इस धमाके की वजह से एक प्रमुख नेता की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये थे हेलमंड के गवर्नर के एक प्रवक्ता के शब्द। रूस के अधिकारियों के अनुसार क्रीमिया के एक शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में 18 लोगों की मौत हो गई है। रूसी जांचकर्ताओं ने बताया कि एक कैफेटेरिया के अंदर बम रखा हुआ था। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में गोलीबारी की बात भी कही गई है। मरने वालों में अधिकतर युवा छात्र थे। प्रशासन अभी इस मामले को चरमपंथी हमले के तौर पर देख रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति घायलों के इलाज पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। इसके साथ ही उन्होंने रूस की आपातकालीन सेवा MCHS को तुरंत घायलों का इलाज करने के आदेश दिए हैं। ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सऊदी अरब के लापता पत्रकार जमाल खाशोजी से जुड़ी कुछ और अस्पष्ट सूचनाएं सामने आई हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोगान से मुलाकात की। इस बीच तुर्की सरकार समर्थित एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि उनके हाथ कुछ रिकॉर्डिंग लगी हैं, जिससे मालूम होता है कि खाशोजी को किस हद तक परेशान किया जा रहा था। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने पोम्पियो के साथ हुई मुलाकात को काफ़ी अच्छा बताया है। कांगो गणराज्य ने चीन और स्पेन की कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत कांगो में बिजली बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये मीटू अभियान की बड़ी पहली सफलता है। जब से ये विवाद छिड़ा तो अकबर विदेश में थे, लौटने पर उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया बल्कि एक बयान जारी करके अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ और आधारहीन बताया। दरअसल एमजे अकबर राजनीति में आने से पहले आला दर्जे के संपादकों में गिने जाते थे। उनके साथ काम कर चुकी कम से कम 20 महिलाओं ने उन पर अपने पद का फायदा उठाकर अपने मातहत लड़कियों पर यौन आक्रमण करने का आरोप लगाया। प्रिया रमानी वो पहली महिला पत्रकार हैं जिन्होंने नाम लेकर अकबर को कटघरे में खड़ा किया। आज की इस सबसे बड़ी खबर पर जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आज शाम 5 बजे एमजे अकबर के इस्तीफे की खबर जब आई तो सियासी हलकों में थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रविवार को विदेश के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा देने का दबाव उन पर लगातार बढ़ता जा रहा था। आज उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि मैंने निजी तौर पर अदालत से इंसाफ लेने का फैसला किया है, इसलिए मैं अपना पद छोड़ रहा हूँ। 67 साल के एमजे अकबर पर 15 से ज़्यादा महिलाओं ने मी टू कैंपेन के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इनमें से एक महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने सोमवार को आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई कल से दिल्ली की एक अदालत में शुरू हो रही है। प्रिया रमानी का समर्थन करते हुए कई पीड़ित महिलाओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें भी इस केस से जोड़ा जाए। एमजे अकबर के इस्तीफे की खबर के बाद पत्रकार प्रिया रमानी ने ट्वीट किया और कहा कि एमजे अकबर के इस्तीफे के बाद एक महिला के तौर पर हम दोषमुक्त महसूस कर रहे हैं। अब उस दिन का इंतजार है जब कोर्ट में भी मुझे इंसाफ मिलेगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये सारे इल्जाम उस समय के हैं जब एमजे अकबर एशियन एज के एडिटर थे। वो कई और अखबारों के भी संपादक रह चुके हैं। उनके खिलाफ लगे इल्जाम मंत्री बनने के बाद के नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मी टू आंदोलन के तहत दर्जनों महिलाओं की तरफ से लगाए गए कई पुरुषों के खिलाफ इल्जामों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने उनकी चुप्पी पर ये टिप्पणी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुप्पी बांधे बैठे हैं उनको भी बोलना जरूरी है कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जब आप पर उंगलियां उठती हैं और आपके सरकार के केंद्रीय मंत्रियों पर उंगलियां उठती हैं तब आप चुप हो जाते हैं।
एमजे अकबर के इस्तीफे के बारे में कहा जा रहा है कि पब्लिक के दबाव में दिया गया ये नरेंद्र मोदी सरकार का पहला इस्तीफा है। पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी की सरकार पर एमजे अकबर से इस्तीफा लेने का दबाव बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर काफी लोग एमजे अकबर की आलोचना कर रहे थे। एमजे अकबर ने अपने बयान में आगे कहा कि चूंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से इंसाफ लेने का फैसला किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना पद छोड़ देना चाहिए और अपने ऊपर लगे बेबुनियाद आरोपों का सामना निजी तौर पर ही करना चाहिए, एक मंत्री के तौर पर नहीं। इसलिए मैं भारत के विदेश राज्य मंत्री का पद छोड़ता हूँ। अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
मीटू अभियान पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने ही कुछ समय पहले प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि एमजे अकबर के खिलाफ लगे आरोपों को देखना पड़ेगा, इस तरह तो आप मेरे खिलाफ भी आरोप लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए काफी दबाव है, लेकिन वो अब तक नहीं बोले हैं। एमजे अकबर के बाद राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया पर हमारी सहयोगी कीर्ति दुबे नजर रखे हुए थीं और इस समय वो स्टूडियो में मौजूद हैं। कीर्ति, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं?
राजनीतिक गलियारों और महिला अधिकारों की बात करने वाले जितने भी संगठन थे उनमें एमजे अकबर के इस्तीफे की मांग तेजी से उठती रही थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेजी से आ रही हैं। संजय झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा,
सबके लिए मापदंड एक होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि औरतें झूठ बोलेंगी, ये कोई षड्यंत्र हुई, ये कोई साजिश हुई है। तो हम समझते हैं कि देखिए एक तरीके से ये सारे राजनीतिक ढांचा को ये मीडिया में या एंटरटेनमेंट के जगत में जहाँ भी ऐसे आरोप आए हैं यहाँ पर हर प्रणाली को अपने अंदर झांकना पड़ेगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस कदम की तारीफ की है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है,
कहीं ना कहीं उन्होंने वो सब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब तक पूरा ना हो ये कहा होगा कि तब तक वो अपने पद से इस्तीफा दें, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका वेलकम करता है।
मोदी सरकार या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस्तीफे पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी NI से उन्होंने कहा कि विपक्ष नैतिकता के आधार पर इस इस्तीफे की मांग कर रहा था, उन पर लगे आरोपों की ठीक तरीके से जाँच होनी चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आखिरकार MJ अकबर ने इस्तीफा दे दिया, उन पर शर्म आती है जिन्होंने इसे अब तक टाला। इस इस्तीफे का श्रेय केंद्र सरकार या अकबर को नहीं बल्कि मीटू कैंपेन को जाता है।
कीर्ति, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी दूसरी पार्टियों की आपने बात की, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी की पार्टी है, क्या इनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है?
नहीं, इन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या फिर किसी भी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी से इन्होंने बात नहीं की है, नहीं इस पूरे इस्तीफे और इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन हाँ, सिर्फ महिला संगठनों की बात करें तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा है
और योगेंद्र यादव ने भी शायद अपनी बात
की। जी, योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट किया है, सभी मर्दों को एक छोटा थप्पड़ लगा है और मानवता के लिए भी एक बड़ा कदम है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति दुबे। आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जो बरसों की खामोशी के बाद एक ताकतवर इंसान के खिलाफ खुलेआम बोलने को तैयार हुई हैं? कीर्ति के बाद मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं युवा और महिला मामलों पर नज़र रखने वाली हमारी सहयोगी सरोज सिंह। सरोज, कल तक ये लग रहा था कि इन महिलाओं को अदालत में मानहानि के मुद्दे पर खींचने के बाद मामला लगभग ठंडा पड़ जाएगा या कुछ लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक अकबर ने, जो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, इस्तीफा दे दिया?
देखिए राजेश जी, इसमें सारा खेल जो है वो पिछले 72 घंटों में हुआ है, और अगर हम कहना चाहेंगे 24 घंटों में पूरी जो बाजी थी वो पलट गई है, जब एशियन एज की तरफ से 20 महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने एक पत्र लिखा और बोला कि हमारी भी आवाज़ सुननी चाहिए, वो कोर्ट तक गई। तो वो जो 20 महिलाएं एक साथ और साथ सबने अपना अपना पक्ष रखा और कब से कब तक वो काम करती थी, ये बाकायदा एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो रिलीज़ भी किया गया और कहा कि अगर उनको सुनना है तो हमें भी सुनिए। तो जैसे ही, इसको कह सकते हैं आप कि वहीं से ये प्रेशर जो है वो माउंट होना शुरू हुआ, और उसके बाद जो 24 घंटों का ये घटनाक्रम था उसके बाद ये प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पर आ गया कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए।
सरोज, जहाँ तक मुझे याद आता है कि प्रिया रमानी ने एक साल पहले एक लेख लिखा था जिसमें MJ अकबर का जिक्र नहीं किया था, उसके बाद फिर ये अचानक एक साल बाद प्रिया रमानी ने MJ अकबर का नाम लिखते हुए किया, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि पूरा ज्वार एक तरह से शुरू हो गया।
यही पिन पॉइंट है एक्चुअली। अपने डिफेंस में अगर अकबर जी का स्टेटमेंट आप देखें संडे का, जब उतरते ही वो बाहर विदेश से वापस लौटे थे, तो उन्होंने उसी को बेसिस बनाया था कि पिछले लेख में, एक साल पहले वाले लेख में उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, लेकिन अब ऐसा अचानक क्या हुआ, इसलिए उन्होंने इसको पॉलिटिक्स का करार दिया कि चुनाव नज़दीक हैं। अपने स्टेटमेंट जाहिर करते हुए उन्होंने ये लिखा था, और जो केस फाइल किया उसमें भी उन्होंने MJ अकबर वर्सेस प्रिया रमानी किया था, लेकिन बाकी और एक दर्जन पर महिलाएं उस वक्त भी सामने में थी।
हाँ, उन सबका नाम लेना तो संभव है नहीं।
हाँ, लेकिन उसमें गजाला वहाब सबसे इम्पोर्टेंट थी, जिन्होंने अपना पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से उनके साथ हुआ था,
और ये सब महिलाएं MJ अकबर के साथ काम करती रही।
बिल्कुल, और कब से किस वक्त तक उन्होंने काम किया वो बाकायदा उन्होंने लिखा, कुछ 1993, 1996, 1997 उस दौरान की ज्यादातर महिलाएं थी। और कल जब 20 महिलाएं सामने आई एशियन एज से, जहां वो पहले संपादक के तौर पर थे, उसके बाद कुछ लड़कों ने भी ट्वीट किया जिन्होंने उस वक्त उनके साथ काम किया था, उनकी भी सॉलिडारिटी साथ में दिखी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, और जब से उनका इस्तीफे की बात सामने आई है उसके बाद से ये महिलाओं ने ट्वीट भी किया। अगर प्रिया रमानी के बारे में बताऊं
जी, तो प्रिया रमानी के बारे में अगर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो हमारे पास शायद उतना समय नहीं होगा, लेकिन जितनी जानकारी अभी आपने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सरोज सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कीर्ति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही ये खबर आई कि MJ अकबर ने इस्तीफा दिया है, वैसे ही BBC ने उन महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश की जिन्होंने अकबर पर आरोप लगाए। कुछ नाम अभी आपने सुने सरोज से, एक सुपर्णा शर्मा हैं जो अब दी एशियन एज की संपादक हैं, और सुपर्णा ने सरोज सिंह से संपर्क किया और उनकी पहली प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। लीजिए, आप भी सुनिए।
जी देखिए, ऐसा है, जिस दिन वो आए थे वापस उसी दिन उनको दे देना चाहिए था इस्तीफा, और उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि और भी लड़कियां आगे आई हैं, और आज तो आदमी भी हमारे जो मेल कॉलीग्स थे बहुत सारे आगे आए हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें पता है अकबर साहब क्या करते थे, किस तरह से डील करते थे लड़कियों से, तो प्रेशर तो बिल्ड हो रहा था, तो उसके नजर में उन्होंने रिजाइन किया है। तो ये एक मीटू मूवमेंट के लिए और हमारे लिए एक अभी फर्स्ट विक्ट्री है, ये हमारी एक अच्छी मोमेंट है इस मीटू मूवमेंट के लिए। ये जो आपकी तरफ से 20 महिलाएं सामने आई उसके बाद ये 72 घंटे में मामला बदला है। हाँ जी देखिए ऐसा है, क्या 12 लड़कियां आई थी अपनी अपनी अकाउंट्स के साथ, अपनी अपनी कहानियों के साथ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, यहाँ पर ऐसे किया। गजाला आई, एक जो फॉरेन इंटर्न थी वो आई, माइली। तो उसके बाद फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने ये एक कोर्ट केस कर दिया। उसके बाद कल भी एक तुषिता पटेल का एक अकाउंट आया है, 2 लड़कियों का, और बहुत ही दिल दहलाने वाले अकाउंट आए हैं, किस तरह से उन्होंने उनको उनके साथ बदतमीजी की, उनको लाइन एक जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको क्रॉस किया। और फिर उसके बाद ये एक जो कोर्ट को ये 20 लड़कियों की जो अपील गई है कि आप हमें भी सुनिए, हम आपको बताते हैं इन्होंने क्या क्या किया, तो उससे वाकई ही प्रेशर बड़ा होगा। और दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है कि उनको स्टेप डाउन करने के लिए बोला है।
मैम ये मोबिलाइज करने की कोशिश आपकी तरफ से थी जो 20 लड़कियां अचानक से एक साथ सामने आई?
देखिए ऐसा है, मैंने जैसे 93 to 96 एशियन एज में काम किया, मेरे बाद कुछ लड़कियां हैं जो मेरे बाद की, मैं दिल्ली से हूँ, मैंने दिल्ली में काम किया, कोई बॉम्बे से है, कोई कैलकाटा से है, कोई कहीं से है। देखिए सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को पढ़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर हर एक लड़की का जो इसको सहन कर चुकी है वो अपना एक उसका इंटरनल प्रोसेस होता है। एक लड़की खड़ी होती है दूसरी को हिम्मत मिलती है खड़ी होने की, तो मेरे ख्याल में यही हुआ है। एक दूसरे को देख के बोला अच्छा ये भी बोल रही है तो मैं भी बोलूंगी इसके साथ, तो ये हुआ है। और यही इस मी टू मूवमेंट की एक ब्यूटी है, खासियत है।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आगे जब इनका इस्तीफा हो गया और उन्होंने ये लिखा है बकायदा कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में लड़ूंगा, मैं मंत्री के तौर पर नहीं लड़ना चाहता था, इस डिफेंस को आप उनके कैसे देखते हैं?
जी इस डिफेंस को तो मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा है कि उनको समझ आ गया है कि ये लड़ाई उनके बीच और ये लड़कियां हैं उनके बीच है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस प्रिया रमानी फाइट अब नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जितनी देर ये लड़ाई चलेगी उनकी प्रिया रमानी के खिलाफ, हम सब उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
पहला रिएक्शन आपका जब आपने सुना कि एमजे अकबर हैज रिजाइंड?
जी एक बहुत अच्छी मधुर सी स्माइल मेरे मुंह पे थी, आप होती तो देख लेती।
एक बहुत ही मधुर सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर थी। कह रही थी एशियन एज की संपादक सुपर्णा शर्मा, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सरोज सिंह। विषय बदलते हैं और बात करते हैं केरल के सबरीमाला मंदिर की, जहां भगवान अयप्पा के दर्शन करने जा रही महिलाओं को ताकत के बल पर रोकने की कोशिश की गई। खबरों के मुताबिक भीड़ ने टेलीविजन पत्रकारों पर हमले किए और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। आप जानते ही हैं कि परंपरागत तौर पर 10 से 50 साल की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को महिलाओं के साथ भेदभाव कहते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद पहली बार मंदिर में दर्शन शुरू हुए हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
सबरीमला के द्वार खुलने पर आशंका जताई जा रही थी कि कुछ विरोध जरूर होगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि मंदिर में प्रवेश करना चाह रही महिलाओं को रोकने के लिए भीड़ मारपीट पर उतर जाएगी। उधर भीड़ ने टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टरों पर हमला किया और मीडिया की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। नीलकल में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अपने 2 बच्चों और मां के साथ जंगल के रास्ते से मंदिर की ओर बढ़ रही एक महिला का वीडियो बनाकर भीड़ ने उनकी उम्र पूछी, फिर उनको घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। उस महिला और उसके परिवार को पुलिस ने सुरक्षा दी और उसको किसी सुरक्षित जगह ले गई। महिला ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक और 72 साल की महिला शांति ने बीबीसी को बताया कि सबरीमला मंदिर आने की उनकी पुरानी इच्छा थी। हाँ, मुझे 50 साल की उम्र से पहले भी बहुत इच्छा थी यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाई, पर पिछले 7 साल से यहाँ हर साल आ रही हूँ। ये थे शांति के शब्द। लेकिन जब शांति से पूछा गया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करती हैं, तो वो थोड़ा झिझकते हुए कुछ सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ भक्तों ने कहा कि वो पिछले 30 साल से सबरीमला आते रहे हैं, पर अगले साल से शायद नहीं आएंगे। चेन्नई में एक होटल मालिक मुर्गन 2 बुजुर्ग पुरुषों के साथ सबरीमला आए हैं। मुर्गन ने कहा,
उम्र
हमारे दोनों बुजुर्ग यहाँ 30 साल से आ रहे हैं। इस समय इसलिए आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। ये थे मुरुगन के शब्द। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद युवा महिलाओं के लिए अयप्पा भगवान के दर्शन करने की राह आसान नहीं लग रही है। इमरान कुरैशी, BBC, पम्बा, पतनमतिट्टा, केरला।
दिन भर कार्यक्रम आप BBC हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। मैं हूं राजेश जोशी और वक्त है दुनिया जहान का। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशुजी के लापता होने से अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की के संबंधों में खटास आने लगी है। खाशुजी को तुर्की में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में दाखिल होते देखा गया था, मगर वो फिर बाहर नहीं निकले। उनके अपहरण से लेकर हत्या तक की खबरें आ चुकी हैं और आरोप सऊदी अरब पर लग रहे हैं। अब पूरी दुनिया इस मामले पर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि उसके सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगी अमेरिका पर दबाव बना रही है। इस बार दुनिया जहान में हमारे सहयोगी आदर्श राठौर इसी मुद्दे की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां।
मैं अपने बच्चों और पोतों के लिए काफी चिंतित हूँ। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सत्ता पर एक ही आदमी का काबिज होना। हमें सुधार की जरूरत है, पर एक ही शख्स के हाथों ताकत सीमित हो जाने से देश के गलत दिशा में जाने का खतरा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, जर्मनी या इराक।
ये आवाज थी सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोजी की, जिनका पिछले 2 हफ्तों से कोई अता पता नहीं। जैसा कि आपने सुना, खाशोजी खुलकर सऊदी अरब की राजशाही का विरोध करते थे। तुर्की ने आशंका जताई है कि इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में खाशोजी की हत्या कर दी गई है। सऊदी अरब इसका खंडन कर रहा है, मगर खाशोजी की गुमशुदगी को लेकर उंगलियां सऊदी अरब पर ही उठ रही हैं। साथ ही अमरीका पर दबाव बढ़ रहा है, जो सऊदी अरब का बेहद खास और करीबी पश्चिमी देश है। तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि इस मामले को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।
ट्रंप सऊदी अरब का बहुत बड़ा सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं और जमाल खाशोगी वो वॉशिंगटन में ही रुके हुए थे और वो अभी टर्की अपने किसी काम से आए हुए थे। ऐसे में ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि वो एक ऐसे जर्नलिस्ट जो कि US में बेस्ड था, US में रह रहा था, और उसको ऐसे गायब कर दिया गया है, तो इसको लेकर के पूरी दुनिया से ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर बनता रहा।
खाशोजी वाला मामला सामने आने से पहले ही ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में मिसिसिपी में एक रैली को संबोधित करते हुए सऊदी अरब और वहां के शासक किंग सलमान पर तीखी टिप्पणियां की थी।
We protect Saudi Arabia, would you say they're rich? And I love the king, King Salman, but I said king.
हम सऊदी अरब की रक्षा करते हैं, वो अमीर हैं, मुझे किंग सलमान पसंद हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, किंग सलमान, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप 2 हफ्ते में ही सत्ता खो सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो अमेरिका अपने सबसे पुराने सहयोगी देशों में से एक सऊदी अरब को लेकर इस तरह की तीखी भाषा इस्तेमाल कर रहा है। क्या दोनों देशों की गहरी दोस्ती में दरार पैदा हो गई है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान बताते हैं कि क्यों आजकल अमेरिका सऊदी अरब को लेकर कुछ उखड़ा हुआ है।
करंट क्राइसिस जो चल रहा है जमाल खाशोगी का, उसके पीछे 3-4 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो न्यूक्लियर डील है उसके बाद से जो अमेरिका ने विदड्रॉ किया है, तेल की कीमत बढ़ती चली जा रही है और अमेरिका ने पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत दबाव डाला है सऊदी अरेबिया के वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान का जितना कोटा था कि वो पूरा का पूरा वो भरे।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही सऊदी अरब को लेकर बेरुखी अपना रहा है, बल्कि सऊदी अरब भी अमेरिका से अलग अपना वर्चस्व खाड़ी देशों के बीच बनाने की कोशिश कर रहा है। अंकारा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं कि इसकी शुरुआत अरब स्प्रिंग से हुई थी।
तो जब 2011 में अरब देशों में एक अरब स्प्रिंग के नाम से जो क्रांतियां आना शुरू हो गई, तो उसमें सबसे पहली क्रांति ट्यूनिस में आई और दूसरी क्रांति इजिप्ट में आई, मिस्र में। सऊदी अरब लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि मिस्र में हुस्नी मुबारक की सरकार को न गिरने दिया जाए, क्योंकि हुस्नी मुबारक सऊदी अरब का जो क्षेत्रीय समीकरण था उसमें एक बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर वो बने हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बराक ओबामा ने हुस्नी मुबारक से अपना समर्थन वापस ले लिया और हुस्नी मुबारक को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया और उसके बाद वहां की सरकार बदल गई।
सऊदी अरब में जहां इस्लामिक राजशाही है, वहीं अमेरिका धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक गणतंत्र है। प्रोफेसर मुख्तदर खान बताते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते 1935 से शुरू होते हैं,
जब अमेरिकन कंपनी ने वहां पे तेल का सर्च करना शुरू किया। जब से अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर हैं, उससे पहले सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ज्यादातर इंग्लैंड के साथ थे। और 1940s-1950s से जो सऊदी अरेबिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ऑयल का जो सर्च हुआ है, वो सारा का सारा अमेरिका के साथ हुआ है। 80 से कही के सऊदी अरेबिया की जो ऑयल का कंट्रोल है वो बिल्कुल अमेरिका से इंडिपेंडेंट हो गया है।
बीच में कई मौके ऐसे भी आए जब दोनों देश कई मुद्दों पर आमने सामने खड़े हो गए। मध्य पूर्व मामलों के जानकार उमेर अनस।
1973 में जब अरब देशों और इसराइल के बीच में युद्ध हुआ तो सऊदी अरब को ये लगा कि अमेरिका अरब देशों का साथ देगा या निष्पक्ष रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अमेरिका ने पूरी तरह से इसराइल का साथ दिया, जिसके बाद सऊदी अरब के जो उस वक्त के बादशाह थे किंग फैसल, उन्होंने सारे पश्चिमी जगत के खिलाफ और जिन्होंने भी इसराइल का साथ दिया था उनके खिलाफ एक तेल की पाबंदी लगाने का एक ऐलान कर दिया।
प्रोफेसर मुख्तदर खान मानते हैं कि अमेरिका के लिहाज से देखें तो उसका रिश्ता सऊदी अरब से नहीं बल्कि वहां के शासकों से है।
बेसिकली अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी रॉयल फैमिली के साथ थे, बल्कि सऊदी अरेबिया एज ए मुल्क और कल्चर के साथ नहीं थे।
जानकार कहते हैं कि अगर खशोजी की गुमशुदगी को लेकर उंगलियां सऊदी शासकों पर उठ रही हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। प्रोफेसर मुख्तदर खान बताते हैं कि खशोजी के लेख उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे थे जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गढ़ रहे थे।
सऊदी गवर्नमेंट ये रियलाइज कर रही थी कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स इमेज बदलने में खर्च कर रहे हैं और ये शख्स 2-3 ऑपरेट्स में हमारा सारा का सारा काम अंडू कर दे रहा था।
खशोजी की गुमशुदगी को लेकर बढ़ रहे पश्चिमी देशों के दबाव के बीच सऊदी अरब के अखबारों में ऐसे लेख छप रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर दबाव डाला गया तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रोफेसर मुख्तदर खान कहते हैं कि ऐसी धमकियों में दम नहीं दिखता।
देखिए, ये धमकियां तो पहले भी बहुत दूसरे मुल्कों ने भी दी हैं, ये तुर्की ने भी दिया था। तुर्की जैसे मुल्क इमीडिएटली रियलाइज करे हैं कि ये रशिया चाइना वगैरह बोलने के लिए अच्छा लगता है अमेरिका पे दबाव डालने के लिए, बट दे आर नॉट ऑल वेदर फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स भी नहीं।
ऐसे में इस मामले का हल क्या निकलेगा? मध्य पूर्व मामलों के जानकार उमेर अनस बताते हैं कि इस मामले को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरब पर है।
जमाल खशोगी सऊदी अरब की काउंसलर के अंदर गए हैं, बाहर नहीं निकले हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और संभावित रूप से उनकी हत्या हो गई, ये बात भी अब सबको समझ में आ गई है, इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है।
जानकार मानते हैं कि ये घटना सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों के लिए टर्निंग प्वाइंट है और अगर इस मामले पर सऊदी अरब ने अमेरिका को आंखें दिखाई तो संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से संबंध बेहतर करके सऊदी अरब को अलग थलग करने की कोशिश करें।
ये था दुनिया जहान, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आदर्श राठौर। अब हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन खेल समाचारों का समय बचा नहीं है। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। एमजे अकबर ने भारत के विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। 67 साल के एमजे अकबर पर 15 से ज्यादा महिलाओं ने मीटू कैंपेन के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टाफन दे मिस्तूरो ने अगले महीने के अंत में अपना पद छोड़ देने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उत्तर फ्रांस में एक मुस्लिम संस्थान को 6 महीने के लिए बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने इस संस्थान पर यूरोप में इस्लामिक चरमपंथ फैलाने का आरोप लगाया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। मैं राजेश जोशी अपने सभी साथियों की ओर से आपसे इजाजत चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।